समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
दोस्तों, मंजिलें क्या हैं वो तो फकत बहाना है। मंजिलें क्या हैं वो तो फकत बहाना है, हासिले जिंदगी तो असल रस्तों में आना जाना है। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं शाम के 4:30, यानि वक्त हो गया है आपकी हमारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। और दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रोज की तरह, और फिर चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास दोस्तों, और जानेंगे क्या कुछ खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर, और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संक में मैं हूं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी, आपके जाने पहचाने अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, नमस्कार।
हेलो मुनीश, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट मुनीश शर्मा। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है।
Prime Minister Narendra Modi says it is a matter of immense pride that people from all over the world are coming to India for AI Impact Summit.
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर, पूर्वोत्तर और माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में आ गई है 80% की कमी।
And 8 people killed after massive fire broke out in a factory in Rajasthan. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India AI Impact Summit. The India AI Impact Summit 2026 is underway in New Delhi, Munish. And the 5-day summit is the first ever global AI summit to be hosted in the Global South. And the India AI Impact Summit 2026 is guided by 3 foundational pillars or sutras, which articulate the core principles guiding global cooperation on AI. These are people, planet and progress. And the summit's deliberations are organized through chakras or working groups structured around 7 interconnected thematic areas. And the 7 chakras include human capital, inclusion for social empowerment, safe and trusted AI, science, resilience, innovation and efficiency, democratizing AI resources and AI for economic development and social good.
जी हाँ दोस्तों, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 वैश्विक एआई एजेंडा को आकार देने के लिए एक प्रमुख मंच के तौर पर भारत की भूमिका को मजबूत करता है। ये शिखर सम्मेलन भारत को वैश्विक एआई सहयोग में एक संयोजक और भागीदार के तौर पर स्थापित भी करता है। और अभिषेक, अगर हम देखें तो ये साझा मानकों, सहयोगी ढांचों और जनहित के लिए स्केलेबल समाधानों का समर्थन भी करता है। दरअसल ये संवाद से क्रियान्वयन की तरफ एक तरह के संक्रमण का प्रतीक है, जो जिम्मेदार, समावेशी और विकास पर केंद्रित एआई मार्गों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
Yes, of course, Munish, and AI offers India a powerful pathway to expand social inclusion by improving access to services and participation for communities across languages, regions and abilities. And India's digital public infrastructure positions it well to translate AI innovations into tangible social outcomes. And the Inclusion for Social Empowerment thematic working group focuses on advancing inclusive by design AI solutions that reflect India's diversity, strengthen institutional readiness, and ensure AI systems remain safe, relevant, and usable, with clear benefits for underserved and vulnerable communities.
Indeed, AI flavor of the season for every reason, अभिषेक। और देखें तो भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो दक्षता और स्थिरता पर खास तौर से बल देता है, जिसमें तकनीकी प्रगति को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और समावेशी पहुंच के साथ जोड़ दिया गया है। इसमें लचीलापन है, नवाचार है यानी इनोवेशन है, और दक्षता विषयगत कार्य समूह भारत की मजबूतियों का फायदा उठाते हुए दक्षता को यानी स्किलफुलनेस को एक प्रमुख डिजाइन सिद्धांत के तौर पर बढ़ावा दे रहा है, जिससे अनुकूलनीय और जलवायु सचेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां विकसित होती हैं, जो पहुंच का विस्तार करती हैं, वैश्विक असमानताओं को कम करती हैं और फिर एक लचीले, समावेशी और टिकाऊ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन भी करती हैं।
Yes, of course, and AI is indeed making an impact, Munish. And over 100 countries have been invited to the summit, and more than 2 lakh people have registered online. World leaders from 20 nations are scheduled to attend the event. They include President of France, Emmanuel Macron, Brazilian President Luis Inácio Lula da Silva, President of Spain, Pedro Sánchez Pérez Castillon, President of Switzerland, Guy Parmelin, Netherlands Prime Minister Dick Schoof, UAE's Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prime Minister of Mauritius, Dr. Naveen Chandra Ram Gulam, Sri Lankan President Anuradha Kumaradesanayake, Vice President of Seychelles, Sebastian Pillay, and Bhutanese Prime Minister Shering Tobgay.
जी हाँ अभिषेक, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत AI Impact Summit के लिए दुनिया भर से लोगों का भारत में आना सब देशवासियों के लिए गर्व की बात है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए दुनिया भर के नेताओं, उद्योगपतियों, नव प्रवर्तकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत किया है। और दरअसल उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये मौका इस बात का एक सबूत है कि हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान तो दे ही रहा है।
Yes, and the Prime Minister added that the occasion also shows the capability of the country's youth. He also highlighted the summit's theme of Sarvajan Hitaye, Sarvajan Sukhaye, or welfare for all, happiness for all, reflects the country's shared commitment to harnessing artificial intelligence for human-centric progress.
और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का करेंगे उद्घाटन। 5 दिवसीय ये एक्सपो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के साथ आयोजित किया जा रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यावहारिक प्रदर्शन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर यह काम करेगा। इसमें AI इकोसिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाने वाले 13 देशों के पवेलियन भी शामिल रहेंगे।
Yes, and also the Indian Army, Munish, will highlight its expanding integration of artificial intelligence to strengthen sustainment, enhance operational readiness, and build future-ready defense capabilities at the AI Impact Summit 2026. And in a social media post, the Army said visitors can explore cutting-edge dual-use technologies at the Indian Army AI stall at the Bharat Mandapam in New Delhi. And the stall will showcase how advanced innovation is reinforcing national security while advancing people, planet, and progress.
Well, much. A much needed step indeed. और अगर हम यहां देखें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है उसने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में एक खास तौर से एक पवेलियन स्थापित किया है जो भारत की बढ़ती हुई तकनीकी क्षमताओं, बढ़ते हुए स्टार्टअप्स और जिम्मेदार AI को अपनाने के लिए नीति पर आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस पवेलियन में एक वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर भी है। जी हां, इसे मीडिया और संवाद मंच के तौर पर डिजाइन किया गया है और मंत्रालय ने बताया कि इस पवेलियन का मकसद भारत के AI पारिस्थितिकी तंत्र को सिर्फ वैश्विक प्रौद्योगिकी के उपभोक्ता के तौर पर नहीं बल्कि स्वदेशी और सामाजिक रूप से प्रासंगिक AI समाधानों के निर्माता के रूप में भी प्रस्तुत करना है। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और उनसे जानने का कि क्या कुछ है उनके पास आज खास।
Yes, Munish, and we start off with a story from Kohima. And Nagaland will join the country in conducting the second edition of the nationwide campaign Mediation for the Nation 2.0, which is set to be launched across the country from March 2026. The nationwide special mediation drive, Mediation for the Nation, has been conceptualized by the National Legal Services Authority in association with the Mediation and Conciliation Project Committee of the Supreme Court of India. And the initiative has been carried out under the guidance of Chief Justice of India, Surya Kant. And we have a report from a correspondent.
Joining with the country, the Nagaland State Legal Services Authority, NSLSA, will spearhead the 90-day mediation drive across the state from next month. The initiative aims to settle pending cases through mediation across all district service authorities in Nagaland. During the campaign, various categories of cases will be taken up for mediation. This includes matrimonial disputes, motor accident claim cases, domestic violence cases, check bounce cases, commercial disputes, service matters, compound doubles, criminal cases, consumer disputes, partition suits, eviction matters, non-accusation cases and other suitable civil disputes. In the previous edition of the campaign Mediation for the Nation 1.0 conducted in 2025, the NSLSA successfully settled 90 disputes amicably out of 397 cases referred by the District Legal Services Authority and the High Court Legal Services Authority. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
दोस्तों, भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को नई मजबूती देने के मकसद से भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का आयोजन आज से 28 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और तराई के इलाके के 8 जिलों में किया जा रहा है। 13 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव कला, संस्कृति और लोक परंपराओं के माध्यम से दोनों देशों के बीच भाईचारे का संदेश देगा। और इस महोत्सव के शुभारंभ को अगर हम देखें तो ये आज कुशीनगर में हो चुका है। एक रिपोर्ट।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि यह महोत्सव दोनों देशों की साझा विरासत, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि कलाकारों की प्रस्तुतियों के माध्यम से आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश जन जन तक जाएगा। महोत्सव के अंतर्गत 16-17 फरवरी को कुशीनगर, 18-19 फरवरी को सिद्धार्थनगर, 20 फरवरी को महाराजगंज और 21 फरवरी को बलरामपुर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं महोत्सव के तहत 22 फरवरी को श्रावस्ती, 24 फरवरी को बहराइच, 26 फरवरी को लखीमपुर खीरी तथा 27-28 फरवरी को पीलीभीत में भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव में भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा, कवि सम्मेलन, संगोष्ठियां और भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंधों पर विशेष परिचर्चाएं होंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना की प्रदर्शनी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी। इसमें स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। चित्रकला, रंगोली प्रदर्शनियों के साथ साथ विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सहयोग से विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
Yes, and now we turn attention to a story from Cuttack. An Indian Institute of Technology, IIT Bhubaneswar, has signed a Memorandum of Understanding, MOU, with Gujarat Mineral Research Industrial Consultancy Society, GMRICS, to foster long-term academic and research collaboration in the areas of geology, mining, mineral exploration, and allied earth sciences. We have more from a correspondent.
The two institutions, Indian Institute of Technology Bhubaneswar and Gujarat Mineral Research Industrial Consultancy Society, a research arm of Gujarat Mineral Development Corporation Limited, will establish a strategic partnership in research, education and training with emphasis on collaborative research projects, knowledge exchange, capacity building and skill development in line with the National Education Policy 2020 during the agreement period spanning 5 years. As part of the collaboration, Gujarat Mineral Research Industrial Consultancy Society, which undertakes advanced research in geology and mining, including mineral reserve assessments, identification of mineral rich zones, market research and database development, will facilitate industrial training, internships, field-based research and hands-on exposure for students of IIT Bhubaneswar. Experts from Gujarat Mineral Research Industrial Consultancy Society and its associated centers, such as the International Center of Excellence in Mining Safety and Automation and the International Center for Entrepreneurship and Technology, will also deliver specialized lectures, training programs and practical demonstrations for students and faculties under the pact. This collaboration between the two institutions is expected to contribute to sustainable mineral development and human resource capacity building in the mining art sciences sector. For Parikrama, this is Nirmalya Vera for Akashvani Cuttack.
दोस्तों, तालाब में फैल जाने वाली जलपर्णी से पर्यावरण संरक्षण के साथ महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता देने वाला एक अभिनव प्रयास इन दिनों नागपुर के लिए एक प्रेरणादायी मॉडल बनकर के उभरा है। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं हमारे प्रतिनिधि से।
नागपुर के अंबाजरी तालाब में फैलने वाली जलपर्णी अब समस्या नहीं बल्कि अवसर बन रही है। वीड टू वेल्थ संस्था की संस्थापक स्वाति धोटकर ने जलपर्णी से सुंदर और टिकाऊ हस्तशिल्प तैयार कर नई मिसाल पेश की है। इस पहल से तालाब की स्वच्छता के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब तक एक एकड़ क्षेत्र से जलपर्णी हटाकर उससे बैग, योगा मैट, पर्स और अन्य उपयोगी वस्तु बनाई जा चुकी है। इस परियोजना से जुड़ी 100 से अधिक महिलाओं ने 800 से ज्यादा उत्पादन तैयार किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस अभिनव प्रयास की विशेष सराहना की है। उन्होंने कहा कि सही ब्रांडिंग और मार्केटिंग से यह प्रोजेक्ट वैश्विक पहचान बना सकता है। पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को जोड़ने वाला यह प्रयास वीड टू वेल्थ की सोच को साकार कर रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
Yes, and in a bilingual live phone-in program, Public Speak today, at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on ways to handle exam-related pressure and stress with Dr. Manjushree Gupta, Department of Psychiatry, Safdarjung Hospital, and Shweta Arora, JS, CBSE. During the program, listeners can ask questions related to the subject. To participate, simply dial the telephone number 011-2331-0481. 011-2371-7117, 011-2371-7106, and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR.
और दोस्तों आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल। पहले बात क्रिकेट की। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 5 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बल्ले गेंदबाजी का उन्होंने फैसला किया और संयुक्त अरब अमीरात ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 160 रन बनाए और फिर जवाब में अफगानिस्तान ने 20वें ओवर की 4 गेंद जब रह गई थी शेष तो 162 रन बनाकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। और इस बीच कोलकाता में इंग्लैंड ने इटली के साथ ग्रुप सी के मैच में टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया। उधर पल्लेकेला में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से मुकाबला खेला जाएगा।
Yes, now on to some business news. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, witnessed a strong rally today. The gains to robust value buying in banking stocks, which attracted investors after recent price corrections. At the end, Sensex climbed 650 points to close at 83,277, while the Nifty added 211 points to settle at 25,682. In the forex market today, the rupee was at 90 rupees and 61 paise against the US dollar short while ago. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading up at 1,55,120 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading up at 2,40,880 rupees per kilogram when reports last came in. And for more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
और दोस्तों परिक्रमा का ये सफर आ गया है उस पड़ाव पर जब आप और हम हर रोज मिलकर याद करते हैं अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को और स्मरण करते हैं उन महान व्यक्तित्वों को भी जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember one of the prominent activists of the Indian Renaissance, Rajendra Lal Mitra, who was born on the 16th of February 1822 in Calcutta. Rajendra Lal was famous as one of the most learned men of India of his time and knew Hindi, Sanskrit, Persian, Urdu, English, French, Greek and Latin.
Rajendra Lal laid the foundation of the tradition of the study of Indian antiquities by Indians themselves. He worked throughout his life in the Asiatic Society and rose from the rank of librarian to the society's first Indian president in 1885. Some of his pioneering works include the Sanskrit Buddhist literature of Nepal, the antiquities of Orissa and Buddhagaya, the hermitage of Shakyamuni.
Rajendra Lal was the chairman of the reception committee during the second session of the Congress that was held in Calcutta in 1886. He was one of the first Indians to be honored by scholarly and learned bodies in Europe in the 19th century. He was admitted as an honorary member of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.
We also remember the eminent scientist Meghnath Saha, who died on the 16th of February 1956. Saha was forced to leave his school for his participation in the Swadeshi movement.
While Meghnath was in school, the governor of Bengal came to inspect his school. Many students, including Meghnath, opposed the imperialist British governor. As a punishment, the school administration stopped Meghnath's scholarship and threw him out of the school. Later, he took admission in a private school. During higher studies at Presidency College, Saha was fortunate to have teachers like Jagdish Chandra Bose, Sharada Prasanna Das and Prafulla Chandra Ray. His class fellows included Satyendranath Bose and Bagha Jatin.
Saha's best-known work concerns the thermal ionization of elements, and it led him to formulate what is known as the Saha equation. He also invented an instrument to measure the weight and pressure of solar rays and helped to build several scientific institutions such as the Physics Department in Allahabad University and the Institute of Nuclear Physics in Calcutta.
As the chairperson of the Calendar Reforms Committee set up in 1952, Saha helped assimilate 30 kinds of Indian calendar systems into one national calendar. Saha was nominated for the Nobel Prize in Physics multiple times and was also elected to the first Lok Sabha in 1952 as an independent candidate. He worked as a professor of Allahabad University and thereafter as professor and dean at the University of Calcutta until his death in 1956. AIR salutes the great patriot scientist.
We also remember freedom fighter Balcha, who took part in the Bhumkal revolt in 1910 in the Jagdalpur area of Bastar against feudal and colonial exploitation. In the intense battle known as the Indrawati Fort Battle that took place on the 16th of February 1910, Balcha and his associates fought against the British. When the defeat was imminent, Balcha managed to escape along with his associates and rallied around the neighboring villages. However, they were surrounded on the night of 25th of February by the British forces and captured.
The freedom fighters were charged with waging war against the British Crown and tried in the famous Jagdalpur trial. 78 of the freedom fighters, including Balcha, were imprisoned in Bastar jail, but later in June 1910 shifted to the Raipur Central Jail, where he died suffering ill treatment and tortures by the jail authorities. We salute the great martyr.
Yes, and we're also remembering Dhundi Raj Govind Phalke, who passed away this day in 1944. Popularly known as Dada Saab Phalke, he was a producer, director and screenwriter, widely regarded as the father of Indian cinema. Phalke's debut film, Raja Harishchandra, in 1913 was the first Indian motion picture and is recognized as India's first full-length mythological feature film. The movie's success marked the beginning of Indian cinema and inspired the growth of the film industry in the country.
जी हाँ दोस्तों, दादा साहब फाल्के ने बनाई दरअसल कुल मिलाकर के 94 फीचर फिल्में और 27 लघु फिल्में 1913 से 1937 के बीच में. और उनकी खास फिल्मों को अगर हम याद करें तो आज भी याद आती है मोहिनी भस्मासुर जो आई थी 1913 में, सत्यवान सावित्री 1914 में, लंका दहन 1917 और श्री कृष्ण जन्म 1918 और फिर काली मर्दन 1919. दरअसल ये वो दौर था जब माइथोलॉजिकल फिल्मों का दौर था और ऐसी फिल्में जो हमारे प्राचीन कथानक थे उन पर वो बनाई जाती थी.
Yes, Munish, and he was also, दादा साहब फाल्के was known for his creativity, technical innovation and ability to adapt mythological stories for the screen, often handling multiple departments such as editing, set design and makeup himself. And in recognition of his contributions to Indian cinema, the Government of India instituted the Dada Saab Phalke Award in his honor. It remains the highest award in Indian cinema, presented annually as part of the National Film Awards to honor lifetime achievement in filmmaking.
indeed the greatest of our pioneers in Indian history. और दरअसल भारतीय सिनेमा के पितामह का उन्हें दर्जा दिया जाता है और सबसे बड़ा पुरस्कार है अभिषेक, जैसे हम जानते हैं दादा साहब फाल्के जो उनकी स्मृति में दिया जाता है किसी ऐसे व्यक्तित्व को जिसे आजीवन योगदान के लिए जब केंद्र सरकार जो है वो सम्मानित करती है.
Yes, and moving on, Angela Olive Pierce passed on this day 1992, who published under the name Angela Carter. She was an English novelist, short story writer, poet and journalist known for her feminist magical realism and picaresque works. She is mainly known for her book The Bloody Chamber in 1979. In 1984, her short story The Company of Wolves was adapted into a film of the same name. And in 2008, The Times ranked Carter 10th in the list of the 50 greatest British writers since 1945. And in 2012, Nights at the Circus was selected as the best ever winner of the James Tait Black Memorial Prize.
और दोस्तों आज जयंती है मोहम्मद शेख की, जिनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 1937 को गुजरात में. एक मशहूर चित्रकार, लेखक और कला समालोचक. 1983 में उनका कला के प्रति योगदान देखते हुए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उन्हें हम याद करते हैं और अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं.
Yes, and Eckhart Tolle was born on this day in 1948. He's a German spiritual teacher and self-help author. His books include The Power of Now, A Guide to Spiritual Enlightenment, A New Earth, Awakening to Your Life's Purpose, and the picture book Guardians of Being. While working towards his doctorate at the University of Cambridge in 1977, Tolle abandoned his studies after claimed spiritual awakening and later began working as a spiritual teacher. He came to prominence as a self-help author beginning in the 2000s, aided through promotion by Oprah Winfrey. His teachings draw from traditions such as Zen Buddhism, Christian mysticism, Sufism and Hinduism, although he remains unaffiliated with any particular religion.
जी अभिषेक, आज का दिन दरअसल जुड़ा है कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नई पहल की, चाहे वो दादा साहब फाल्के हो, आपने अभी जिक्र किया जो उपन्यासकार हैं उनका, और बप्पी दा की भी आज पुण्यतिथि है. भारतीय सिने जगत के मशहूर संगीत निर्माता, गायक और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, और जन्म हुआ था उनका 27 नवंबर 1952 को, और 2022 में 16 फरवरी को उन्होंने कह दिया इस नश्वर संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा. हिंदी फिल्मों में उन्हें जाना जाता है उनके किए गए कई खास नए प्रयोगों के लिए, और जिस तरह का संगीत दरअसल उस समय सिनेमा में था उसमें उन्होंने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का, पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का और धुनों का जो प्रयोग किया उसके लिए उन्होंने कई बार आलोचना भी झेली, लेकिन वो रुके नहीं और उन्होंने लगातार ऐसा संगीत दिया जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया और आज भी वो पुराना नहीं मालूम होता है. जब भी हम बप्पी दा के गीत सुनते हैं तो गुनगुनाने को मजबूर हो जाते हैं, खुद ब खुद पैर थिरकने लगते हैं. और उनकी यादगार फिल्मों की अगर बात करें अभिषेक, तो याद आती हैं हमें फिल्में चलते चलते, डिस्को डांसर जिसने मिथुन चक्रवर्ती को एक सुपरस्टार के तौर पर स्थापित किया, वांटेड और कई और ऐसी फिल्में जिनमें मिथुन चक्रवर्ती दरअसल मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. बहरहाल सुनते हैं उनके कुछ यादगार अनमोल गीतों की ये एक झलक.
हाँ, गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की, हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की. पग भुंग रुबाद मेरा लाठी थी, वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से झूके 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 रे. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना.
तो दोस्तों बप्पी दा के इस गीत में दरअसल छिपी है वो इल्तिजा जो हमेशा हम करते हैं आपसे कि कभी अलविदा ना कहना. कार्यक्रम हम शुरू करते हैं, कार्यक्रम अंत भी होता है, लेकिन आपका और हमारा जो साथ है वो लगातार बना रहे. क्यों अभिषेक?
एब्सोल्युटली. एंड वी आल्सो रिमेम्बरिंग मुनीश जॉन पैट्रिक मैकनरो जूनियर हु वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1959. ही इज एन अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर. ही वाज रैंक्ड एज द वर्ल्ड नंबर वन इन मेन सिंगल्स बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एटीपी फॉर 170 वीक्स एंड एज वर्ल्ड नंबर वन इन मेन्स डबल्स फॉर 269 वीक्स. थर्ड मोस्ट ऑफ ऑल टाइम.
लेजेंड इंडीड. और दोस्तों वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो अनुमति दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा को और हमारे मित्र अभिषेक को. तो हम परिक्रमा यहीं समाप्त करते हैं. अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर. हमें आप मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं. और अब हमें दीजिए आज्ञा. नमस्कार.